ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इन पांच राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में 7 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण और मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। राजस्थान में अधिसूचना 30 अक्टूबर को और तेलंगाना में 3 नवंबर को जारी की जाएगी। नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग इन पांच राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों, राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली सूची और छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र से और राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से उम्मीदवार होंगे। राजस्थान में 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झोटवाड़ा, दिया कुमारी विद्यानगर, बाबा बालकनाथ तेजारा, हंसराज मीणा सपोटरा और किरोली लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से उम्मीदवार होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने आज नई दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, विकास संबंधी साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया के राष्ट्रपति 4 दिन के राजकीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत एक मॉडल निवेश गंतव्य बन गया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों, विशेषकर सागरमाला परियोजना के कारण पिछले दशक में भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और माल लदान क्षमता कई गुना बढ़ गई है। आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण के बारे में श्री सोनोवाल ने कहा कि इस सम्मेलन में करीब 10 लाख करोड़ रूपये का निवेश और 15 लाख रोजगार सृजित होंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आज सिरवानी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ में सिरवानी पुल बह गया है, जो राज्य का एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था। श्री तमांग ने पुल के पुनर्निर्माण का कार्य तेज करने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात बहाली में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। इस बीच सिक्किम में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राज्य की स्थिति के बारे में आज एक समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है। गाजा पट्टी में 1,23,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए युद्धपोत और लड़ाकू जेट विमान तैनात किए हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष से भारत के लिए ऊर्जा संकट पैदा नहीं होगा। नई दिल्ली में श्री पुरी ने कहा कि सरकार इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही है। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों के एथलीट से बातचीत करेंगे। एशियाई खेलों में भारत ने 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हैदराबाद में क्रिकेट विश्वकप में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड को 323 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।